கல்யாண சாதகம் பிரதானம் சர்வதேவம் மனோவமங்கலிங்கணியம் நம சமய சித்தாய ராவாய भगवान आत्मा अनंत अनंत शक्तियों का अनादि काल से है, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। प्रत्येक जीव द्रव्य उसमें अनंत अनंत शक्तियां हैं। जब अंतर्मुखी दृष्टि की चैतन्य जाए भगवान आत्मा की दृष्टि होती है तो वो अनंतानंत शक्तियां पर्याय में उछलती है और पर्याय में उछलने के बाद जैसे खजाना किसी के घर में पड़ा हो तो भले ही कब्जे में पड़ा हो लेकिन उस खजाने से उस व्यक्ति को लाभ नहीं है, ऐसे ही अनंतानंत शक्तियां चैतन्य के गोदाम में पड़ी है लेकिन वो उछल नहीं रही। बराबर जो अनादि से है गोदाम में पड़ी है लेकिन उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है, भले ही अनंतानंद है पार नहीं। इतनी शक्तियों का दारू चैतन्य जाए भगवान आत्मा होने पर भी भान नहीं होने से सुख और आनंद के लिए बाहर पर द्रव्यों में भटक रहा। इस जल शरीर में एकत्व बुद्धि करके इंद्रिय विषयों से सुख की कल्पना करता है और सारा समय शरीर और इंद्रिय विषय भोगों में गवा देता है। शरीर की समाज विषय भोगों की दो ही चीजें इसे चलती। वजह यह है कि अंदरंग में अनंतानंत शक्तियां भरी पड़ी है, उस निदान का भान नहीं होने से चैतन्य जाए भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा पड़ा है। अरे पार नहीं, इतनी शक्तियां भरी पड़ी है जिसका अंत नहीं। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से ऐसी अनंतानंत शक्तियां प्रभु के प्रत्येक जीव द्रव्य के भीतर भरी हुई है, पड़ी है, लेकिन विचार तो करो कि इनका लाभ क्या है, उसका लाभ क्या नहीं। ये बात नहीं कि यदि किसी के पुण्य का उदय हो और उस पुण्य के उदय का वो यदि विषय भोगों में खर्च करे तो लोग क्या कहेंगे कि मूर्ख है। ऐसे ही अनंतानंत शक्तियों का पिंड लिंग चैतन्य जाए भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है अनंतानंत शक्तियों, लेकिन ऐसी शक्तियों के लाभ क्या। वो सूचना दामरे गांधी ने भवाई स्वामी ने उदाहरण दिया, वो एक आज एक शक्ति की बात नहीं, जैसे सूट या हल्दी की जांच से कोई व्यापारी नहीं बनता, अगानी नहीं बनता, ऐसे ही प्रभु सर्वज्ञ नहीं देखती है कि बात एक शक्ति में नहीं है, कितनी है। बाहर से संयोगों को देखता, संयोगों का हिसाब लगा करता है। यदि सच्चा सुख और मोक्ष मार्ग चाहिए हो, अंतरंग से लगन लगी हो कि मुझे तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो अनंतानंत शक्तियों का गोदाम अंतरंग में भीतर जीव को दिखाई देगा। फिर उसके बाद उसको पूछे कि और क्या चाहिए, किरण भाई क्या जवाब आएगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रजनी भाई का भाव है कि 16 शक्तियों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करें, जिससे वो लगे आप अंतिम शाम को बताया करके चले जाए। अभी पहली शक्ति बड़ी अच्छी शक्ति है कि आत्मद्रव्य हेतु भूत। अब पहले जो प्रश्न आएगा, पहली शक्ति निकलनी है कि आत्मद्रव्य हेतु हर कोई अपने अस्तित्व से चिंतित है। यदि मेरे पाप का उदय आ गया, धनाधिक नहीं रहेंगे तो नवीन भाई, यदि आयु समाप्त हो गई तो ये मित्र, आयु समाप्त हो गई तो पाप का उदय आ जाए, धनाधिक न रहे तो कि भैया अनंतानंत शक्तियां हैं, कोई तेरे साथ रहे अथवा न रहे, ये अनंतानंत शक्तियां सदा का तेरे साथ थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगी। और सही मायने में संसार में तेरा कोई नहीं, ये शरीर जो 24 घंटे साथ रहता है, इसका एक परमाणु भी तेरे साथ नहीं है। पूर्व के शरीर के परमाणु भिन्न, देश के शरीर के परमाणु भिन्न है। अब ये जो अस्तित्व की आशंका है, उसके लिए कही सकती है आत्मद्रव्य हेतु भूत, तेरा आत्मद्रव्य सदाकाल चैतन्य प्राणों से, चैतन्य भाव प्राणों से शरीर को जड़ है। ये आत्मा किससे जीता है रमेश भाई, किससे जीवित है? जीवंत शक्ति से सदाकाल जीवित, किसी की फिक्र करने की आवश्यकता तो अनादि का है, अनंत काल तक रहेगा। अब सुखी या दुखी, संसार में या मोक्ष में, ये तेरा विचार है, लेकिन रहेगा। अनादि से था, इसी शक्ति के बल पर था, आत्मद्रव्य की हेतु भूत, जिनके कारण से आत्मद्रव्य था, ये शक्ति सभी पर लागू करना कि प्रत्येक द्रव्य अपने कारण से है, अन्य के कारण से नहीं। सभी द्रव्य अपने ही कारण से रहते हैं, अपने ही कारण से परिणमन करते हैं। 16 मंदिर 51 या 52 नंबर का जो पेज है मुख्य प्रकाशक में, ईश्वर नहीं अनादि नजन वस्तुएं, क्या लिखा है? ईश्वर में अनादि निरन वस्तुएं हैं, इसे कही जा सकते। विश्व में वस्तुएं कैसी है? अनादि निरन। मैं भी जीव वस्तु हूँ तो कैसी हूँ? अनादि निरन। शरीर की क्या चिंता करना, रहे तो रहे, बीमार रहे तो रहे, अच्छा रहे तो रहे, सुंदर हो तो ठीक, गैर सुंदर हो तो ठीक, काम दे दृष्टि हो जाने के बाद उनको देख करके अन्य लोग आकर्षित तो हो जाए, लेकिन अंतरंग में उनके जरा शरीर को देखकर राजभाव नहीं होता है, और देख करके तो उनकी ओर लालच हो जाए, लेकिन भेद ज्ञान के बल पर चाहे जितना सुंदर चाहे जैसा शरीर हो, वो अपने शरीर को देख करके ये नहीं मानते कि मैं सुंदर, वो अपने आप को सुंदर कहते हैं, लेकिन अनंतानंद शक्तियों को देखते सवत तो सुंदर हो लो समय एकत्व विभक्त की जो चर्चा है, यही चर्चा इस लोक में सब जगह, मंदिर में, घर में, बाहर में, कहीं सर्वत्र एक ही चर्चा, और वही चर्चा सुंदर है। कि उसी चर्चा से एकत्व विभक्त की चर्चा वही सुन रहे हैं। विश्व में अनादि निधन वस्तुएं हैं, ये अनादि निधन वस्तुएं कैसी है? अनादि निधन तो है ही लेकिन भिन्न भिन्न है। मानो जी थोड़ा सा बढ़ा दे। अनादि निधन वस्तुएं कैसी है? भिन्न भिन्न है। कैसी है? भिन्न भिन्न है, कोई किसी में मिली हुई नहीं। ये शरीर का एक एक परमाणु ये भी कैसा है? भिन्न भिन्न है, वो भी अपनी अनंत शक्तियों को लिए हुए है। उसका परिणमन जीव के कारण से नहीं, उसमें भी वीर्यत्व नाम का गुण है। वीर्यत्व तो पुरुषार्थ नहीं, बराबर। उसमें भी वीर्यत्व नाम का गुण है, जिसके कारण से उज्जवल परमाणु की अनादि काल से रचना हुई पड़ी है। स्वामी जी को वीर्यत्व गुण के बारे में ये कहते हैं कि पुण्य पाप की रचना करे वो वीर्यत्व गुण ही नहीं है। कि निर्मल भावों की रचना करे, और जो निर्मल भावों की रचना होती है वो भी वीर्यत्व गुण के कारण से होती है। आत्मा का अनुभव होने पर पर्यायों में जो निर्मलता है, निर्मलता की रचना है, वो किसके कारण से है? और केवल ज्ञान जब प्रकट होता है, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, उस समय अनंत चतुष्टय की रचना करने वाला भी वीर्यत्व गुण, बराबर। कि वो भी रचना बाह्य व्रत तप आदि से नहीं है। कि मैंने व्रत तप ग्रहण किए इसलिए मेरे परिणाम शुद्ध हुए, एम लगी। क्यों? कि पर्याय में जो निर्मलता है वो शरीर की क्रिया के कारण से नहीं, शरीर में जो क्रिया हुई वो शरीर के कारण से, और आत्मा में जो पर्याय परिणमित हुई वो आत्मा के कारण से, और आत्मा में चारित्र गुण की यदि सिद्धि होती है तो वो भी वीर्यत्व गुण के कारण से नहीं, चारित्र गुण के कारण से ही है। वीर्यत्व गुण तो उसमें निमित्त मात्र रूप है। इतनी स्वतंत्रता है वस्तु के रूप में, और सिद्ध होने के बाद सारी अनंत काल तक वैसा का वैसा ही रहना, ये भी वैसी जो रचना है वो भी वीर्यत्व गुण के कारण से। समझ में आती है बात है? कि प्रत्येक द्रव्य अनादि निधन वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न है, अपनी मर्यादा में रहती है। प्रत्येक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है, कोई किसी के अधीन नहीं है। है कर्ता बुद्धि जीव के इतनी बड़ी रहती है कि जिसकी चर्चा करने देता है। यहाँ तो अकर्ता की चर्चा है। उदाहरण देकर उसको समय खराब करने से सबको पता, छोटी छोटी बात पर कर्ता बुद्धि जीव के रहती रहती है। और यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी शक्तियों से भरा पड़ा है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। प्रत्येक समय की पर्याय भिन्न भिन्न है, प्रत्येक समय की पर्याय में कैसा परिणमन होना वो भी है। और जीवन के शक्ति में तो ये कहते हैं आत्म द्रव्य हेतु भूत, इसी चैतन्य भाव प्राणों के कारण से संसार में ये जीव बनता है। पाप के उदय से पुण्य के उदय में अभिमान करता है, मध्यस्थ रहना आज तक इसने सीखा नहीं है। स्वच्छंद शक्ति में ये बात आएगी कि जितना कुछ संयोग वियोग है अपने ज्ञान शक्ति में, स्वच्छता के कारण से बाहर का दर्पण तो मलिन हो सकता है, धूल आ सकती है। स्वच्छत्व शक्ति अनादि से है, बराबर, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। उस स्वच्छत्व शक्ति में कभी धूल नहीं जमती, जानता है। और पुण्य प्रमाण प्राप्त तो होता है, पुण्य पाप के अनुसार संयोग योग होते हैं। कषाय करने की आवश्यकता क्या? बात समझ में आ गई? पुण्य पाप के अनुसार संयोग वियोग हुआ करते हैं, उन संयोग वियोगों में पुण्य और पाप का थर्मामीटर लगा हुआ है। किस समय शरीर बीमार होगा, किस समय कैसा रहेगा, किस समय क्या मान सम्मान धन अपमान आदि, ये सब कर्म के विजय के अनुसार उन्हीं के प्रमाण अनुसार ही उतने प्रमाण में ये सब होते हैं। तो कहीं पुण्य का उदय देख करके अभिमान और पाप का उदय देख करके दीनता करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु तत्व ज्ञान के अभाव में अंतर्मुख दृष्टि नहीं रहने से दूसरी बात ये है कि पुण्य पाप की चर्चा करने वाले बाहर के संयोग वियोग को ही देखते हैं। आयु कर्म के विशेष जब तक है तब तक शरीर रहेगा, कोई कितनी ही कोशिश कर ले नहीं, फिर चिंता क्यों और अवक्त का सेवन क्यों? रत्न जन प्राप्त आता है दो चार देता है कि अवक्त का सेवन करोगे तब भी शरीर का उपयोग होगा और जिस काल में पाप का उदय आना है उस काल आएगा ही। भगवान महावीर के जीवन की जो कहानी है जिसमें वो पूर्णवा भील थे, क्या थे? पूर्णवा भील थे और वन जंगल में मुनिराज का संयोग हुआ। वहाँ पर मुनिराज ने कहा कि तुम मांसाहार का त्याग करो कि प्रभु मेरा तो भोजन ही है। पहले तो मारने के लिए पहले भाव बना था उसका, पत्नी ने मना किया तो भी उसने और कुछ नहीं बोले कुछ तो त्याग करो, ऐसी कहानी आती है। तो कौवे का मांस का त्याग किया और कौवे के मांस का त्याग करने के बाद रोग ऐसा हो गया कि कौवे का मांस बताया तो उसने ये कहा कि मरते मर जाऊ, मरते मर जाऊ तो नहीं हो गया लेकिन अवश्य का सेवन नहीं करूंगा। अभक्त का सेवन नहीं करूंगा, अभक्त मतलब इसलिए अवश्य था कि एक ही जो नियम लिया उसका त्याग क्यों करूं। तो उसका साला जो था वो जिया जी को समझाने के लिए आ रहा था, रास्ते में एक यंत्र भी मिल गई और वो यंत्र भी कहती है कि आप जिसको समझाने के लिए जा रहे हो अभक्त का सेवन करेगा वो और मैं मेरा पति होने वाला है और तुम यदि उसको मान सेवन कराओगे तुम अकाल मरण के प्रसंग में उसको तुझे कहा प्रसन्न होगी उसको भी दी कि वो अकाल मरण में मतलब अवक्य का सेवन करेगा तो और दूसरी जगह चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो वो मेरा पति नहीं हो पाएगा। और वहाँ जाकर के जब उसने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा उतनी तैयारी करना हो अवक्य का सेवन नहीं करूँगा ये उसमें से लेना कि अवक्य का सेवन नहीं करूँगा। अवक्य का सेवन उसने सारे के कहने पर भी नहीं किया तो जो भवनवासी देव बनना था वो कल्पवासी देव बना, देवगति में तो जाना ही था उसको। तो ये तो केवल संक्रमण और उत्कर्षण आदि के लिए है तो उसके लिए आयु का क्षय होना था तभी हुआ। लेकिन परिणामों में देख लो, परिणामों में उसने गिरावट नहीं की तो परिणामों में गिरावट नहीं की तो जो भी परिणाम आ गया यहाँ तो शुद्ध चैतन्य तत्व की चर्चा है कि इसमें ये कहते उससे प्रसन्न थे कि जो शरीर है ये रहे तो रहे नहीं रहे तो नहीं रहे, अवक्षात का सेवन नहीं करना, आयु कर्म के अनुसार उसका परिणाम मतलब स्थिति है और नाम कर्म के अनुसार परिणाम है। अवक्ष सेवन करते करते भी बीमारियाँ होती है और कोई यहाँ पर ऐसा प्रश्न करते हैं कि बाबू भाई आदि को देख करके जो बड़े बड़े बाबू आए थे ना उनके संबंध में किसी साधन ने प्रश्न किया बाबू भाई क्या किया कि ये तो कितने जो बात उनको ये समझ में आ जाए कि ये भी आहार है तो जो बाम आदि का प्रयोग नहीं किया उन्होंने लेप आहार की वजह से है वो झंडो बाम वगैरह उसका प्रयोग नहीं किया। जब ये पता चला कि आहार है तो रात्रि में और उनके देखो शरीर में ऐसे छूटे थे ना तो हम जाते थे चर्चा के लिए लेकिन यहाँ इतना दर्द होता है कि दुनिया से हो जाए। लेकिन धन्य हो स्वामी जी के और उनके शिष्यों के कि उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र उनको दिया कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है एक बात शरीर के कारण से तुम्हारा परिणमन नहीं और तुम्हारे कारण से शरीर का परिणमन नहीं है। ऐसे उनके शिष्यों में भी वो संस्कार उसके बल पर जितना उन्होंने सहन करना था वो कर लिया। कहने का आशय ये है कि ऐसे उनको इतना चुपता था बहु वैसे तो कुआ उनके बारे में प्रश्न किया थी कि इनके तो जिनके अवक्षादित का सेवन करते उनके तो रोग ठीक है लेकिन जिन्होंने अवक्ष का सेवन नहीं किया उनके नवीन भाई उनके इनके क्यों हुआ। तो प्रश्न इसका समाधान क्या है कि सीता का जीव एक पूर्व भाव में रेवती नाम की महिला है और उसने मुनिराज को आहार देने का भाव तो उसका था नहीं, जबरदस्ती आहार देने के लिए कहा गया। बाद में सगे भाई बहन मुनिराज और उनकी बहन जो आरजी का बनी थी दोनों सगे भाई बहन थे, सबसे चर्चा ही कर रहे थे लेकिन उसने लोगों में ये बात फैला दी कि ये मुनिराज तो सही नहीं है, तुम इनकी वंदना के लिए जाओ तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि एकांत में स्त्री से बात करते हैं। तो वो जो उस काल में उस समय जो निंदा थी वो सीता के जीवन में जिस जीवन में उसने किसी का अपवाद निंदा आदि नहीं की थी बात समझ में आई। मतलब कभी का कर्म कभी उदय में आता है लेकिन अपने चैतन्य में उसका प्रवेश नहीं है, उदय अपने हाथ में नहीं लेकिन उदय का प्रवेश मुझ में नहीं, उदय हाथ में नहीं है लेकिन उदय का प्रवेश मेरे भीतर नहीं है। मैं अपने जीवन के शक्ति से अनादि काल से था, लोक में निंदा प्रशंसा हो तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं, शरीर रहे अथवा न रहे। रत्न शाकाचार्य ने जो बात नहीं तर्क दिया कि तुम्हारे आघात में शरीर का परिणमन नहीं, अवक्षादित का सेवन करोगे रात्रि में भोजन करोगे तब भी मृत्यु होगी तो फिर ऐसा नुकसान का काम क्यों करो। नहीं कि अवक्ष का सेवन करो रात्रि सेवन करो बाजार आदि की वस्तुएं खाओ तब भी शरीर तो है रुके जाते बजाय क्यों परिणाम से हीन कर अन्याय अनिधि अवक्ष का सेवन करने वाले को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। अन्याय का सेवन करे अवक्ष का सेवन करे अनिधि का सेवन करे उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ जीवों के शक्ति से ये बताया कि तुम सदाकाल जीवित थे आज भी हो और भविष्य में रहोगे, अन्याय अनिति अवक्ष का त्याग करोगे तब भी कितनी शक्तियाँ कम हो जाएगी। अन्याय अनिति अवक्ष का सेवन नहीं करने पर ही बाहर में ऐसा नहीं तो पाप का ही उदय आ जाएगा, आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र मात्र शब्द दिया मन गई आत्म द्रव्य को धारण करने वाली एकमात्र शक्ति है, एकमात्र शक्ति है एक तो नहीं मात्र शक्ति कि चैतन्य जाए द्रव्य को धारण करने वाली एक चैतन्य मात्र शक्ति है। शरीर के काल में भी इस जड़ शरीर के संयोग के काल में भी इस जड़ शरीर से भिन्न है कि जड़ शरीर से उसी समय भिन्न है और उस समय भी चैतन्य मात्र भाव प्राणों से जीवित है। सांस नहीं आई तो अकाल मृत्यु में बाह्य के जो कारण है उनमें सांस बंद का भी कारण नहीं है, ऐसा हुआ तो आकुलता मत करो, सदा काल चैतन्य जीव द्रव्य चैतन्य मात्र भाव प्राणों से ही जीवित है। दूसरी शक्ति है ऐसे जीवत्व शक्ति आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भावों को धारण करना ही है लक्षण जिसका सर्वोपदेश का लक्षण कहो सर्वोप कहो कि ऐसे भाव प्राणों को धारण करना यही है सर्वोपदेश का ऐसी जीवन के कि सबसे विचार करो अनादि से है नरकों में भी जीव इसी चैतन्य मात्र भाव के कारण से वहाँ नरकों में जीव से रहा आज भी जिस जिस पर्याय में था उस पर्याय में इन्हीं प्राणों के कारण इन्हीं शक्तियों के कारण से जीवन के शक्ति के कारण से जीवित था आज भी है शरीर का लक्ष्य छोड़ो चैतन्य जीव द्रव्य को देखो शरीर का स्वरूप विचार करो ये तो जड़ है और इस जड़ के कारण से आत्मा जीवित रहेगी क्या नहीं रहेगी ऐसी जो जीवन की शक्ति है दूसरी है अजड़ा किसी शक्ति स्वामी कहते हैं इसके बारे में कि जबकि किसी शक्ति न हो तो जीव मुर्दा है क्या लिखा मतलब बताया उन्होंने कि किसी शक्ति न हो तो जीव मुर्दा है इस शब्दों में मर्म न हो तो शब्द भी मुर्दा है और पर्याय में चैतन्य जाए समान आत्मा न हो तो पर जो पर्याय है वो भी मुर्दा तो नहीं है इस प्रति समय ज्ञान की दृष्टि कि आप ऐसा कहो कि भोगों के काल में पूरा निर्जरा विचार ऐसे ही पूरा निर्जरा विचार कि भोगों के काल में ही ज्ञानी को निर्जरा होती है कि प्रभु ऐसा क्यों प्रश्न आ रहे कि भोग तो बंध के कारण बताए है भोग बुरे गौरव बढ़ाए बैरी है जल्दी से वैरा के भावना वज्रनाथ चक्रवर्ती की वैराग्य भावना में भोगों की बहुत बुराई थी बुरा बताया है वहाँ उपयोग जीव का रहता है एकांत रूप से तो बुरे हैं अब उन्हीं भोगों के काल में समय दृष्टि से निर्जरा बताए बात बहु बहने कर दी है कि भोगों से निद्रा नहीं होती है भोगों के काल में भोगों के भाव से निद्रा नहीं भोगों से निद्रा नहीं लेकिन भोगों के काल में वो काल का ही विचार करना है कि भोगों के काल में ही चैतन्य जाए तो मैं भगवान आत्मा हूँ ये ज्ञानी भूल के नहीं चैतन्य जाए भगवान आत्मा जिनको याद नहीं आता उनका जीवन व्यर्थ है दिन भर बीजो नहीं मन हो ऐसी स्थिति हो जाएगी रखें जीवों को अतिमिय सुख और अतिमिय आनंद तो चाहिए लेकिन भोगों के साथ ये भी और ये ऐसे दोनों काम एक ही लक्ष्य रहे कि चैतन्य जाए भगवान आत्मा के अलावा मेरा कोई जीवन में दूसरा लक्ष्य नहीं है उसे शरीर से भिन्न चैतन्य जाए भगवान आत्मा दिखाई देता है जाग तो जीव वो से क्या जाए दिख सकता है दिखता है अनंत ज्ञानियों ने इसी मार्ग से मोक्ष को प्राप्त किया है तेरे भीतर भी अनंत पुरुषार्थ भरा पड़ा है इसी मार्ग से तुझे भी मोक्ष की प्राप्ति है सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है कि प्रभु को आलस में प्रमाद में मत दो अंतरंग दृष्टि करके अंतर्मुखी पुरुषार्थ करके एक बार सच्चा पुरुषार्थ तो करे कि तुझे चैतन्य शक्ति मुक्त बिना जड़ वाला चैतन्य जाए भगवान आत्मा दिखाई देगा कि चैतन्य जाए भगवान आत्मा में अनंतानंत शक्तियाँ हैं उनमें से दूसरी शक्ति किसी शक्ति कि कैसी है और जगत आत्मी का चैतन्य शक्ति तो पहले बताई दी थी है, चैतन्य शक्ति पहले बताई, लेकिन इसमें उसमें अंतर क्या है कि जीवन को शक्ति में और पृथ्वी शक्ति में अंतर क्या है हाँ? कि जीवन के शक्ति में चैतन्य के रूप में जीव को धारण करना, ये शक्ति तो सभी द्रव्यों में हो सकती है। चैतन्य शब्द हटा देते कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी शक्तियों से जीवित है, ऐसा ही जीव भी अपनी जीवन के शक्ति से जीवित है, लेकिन उस जीवन में चैतन्य नहीं हो तो उसमें यदि जीवत्व न चैतन्य न हो तो जीवत्व तो है लेकिन उसमें चैतन्य न हो तो जीवन तो है। जीवन सभी का, ज्ञानियों का भी जीवन होता है, अज्ञानियों का भी जीवन होता है। जैसे जो विचार और उपयोग में अंतर का एक प्रश्न पूछा था भाई, किसी ने प्रश्न किया था हमको, टोडर मंडी ने जो कहा था कि जहाँ उपयोग जाता है विचार वही क्या होता है, वैसा तो नहीं वही विचार होता है, ऐसा कहा था कि जहाँ उपयोग जाए विचार वही क्या हो, तो जहाँ उपयोग जाता है तो विचार हो और उपयोग में अंतर क्या है। स्वामी जी से ये भी प्रश्न किया, उपयोग तो 12 प्रकार का है, तो स्वामी जी कहते उपयोग 12 प्रकार का नहीं, उपयोग शक्ति है, वो तो एक ही प्रकार का चैतन्य को ग्रहण करे, चैतन्य का प्रकाशन करे, क्योंकि परिशिष्ट में यही बताया कि ज्ञान वही ज्ञान है जो चैतन्य का प्रकाश करे, जो चैतन्य का प्रकाश न करे वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। यही से शुरुआत है कि उपयोग वही जो चैतन्य जायक भगवान आत्मा को जाने, वो आगम की भाषा में तोरण मंदिर ने जो लिखा कि जहाँ उपयोग जाता है विषय भोगों में जाएगा तो विषय भोगों के विकास, कहने का अर्थ ये है कि एक समय में गया हुआ उपयोग वही अटकता रहता है, इसी से विशेष विशेष पहलुओं को जानता रहता है। समझ में आ गया कि जहाँ उपयोग चला गया वहीं से विचार करते रहते, इसका मतलब क्या कि वही उपयोग अटक गया तो उसमें वही का और दूसरी पहलू से मतलब उपयोग के अनेक पहलुओं को या ज्ञान के अनेक प्रकारों को वहाँ विचार कहा गया। समझना भी है उपयोग के अनेक पहलुओं को कहो या अनेक प्रकार के उसी प्रकार के ज्ञान को वहाँ विचार किया कहा गया, बात समझ में आ गई। लेकिन वैसा का वैसा नहीं होता, अभी तो लाइट करें कि जहाँ उपयोग जाता है विचार उसी का होता है, लेकिन वैसा ही नहीं होता। सम्यक ज्ञानी का परिद्रव्य की ओर उपयोग गया, शरीर पर उपयोग गया, ज्ञान तो वैसा ही होता है कि ये शरीर है, अज्ञानी को भी उसका वैसा ही है, मतलब शरीर है वो तो ज्ञान हो गया लेकिन अंदर में अंदर में परिणामों में ज्ञान के अज्ञान के अंतर आता है। इसलिए इन्हें जरा अधिकार में जो उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया है कि वैद्य उदाहरण दिया, सामान्य वैद्य नहीं है, सामान्य वैद्य नहीं होता है, सामान्य वैद्य रमेश भाई गैर फायदा को मर जाए, जिसको विस्तृत जानकारी है, जिसको विस्तृत जानकारी है। एक बात देखो, सम्यक ज्ञानी जीव के द्वारा यदि उपदेश होता है तो स्वामी जी के प्रवचनों में ही देख लीजिए कि उदाहरण में जो जोर आता है उससे ज्यादा चैतन्य तत्व पर जोर आता है, भाषा में शब्दों में पता चलता है। सम्यक ज्ञानी के द्वारा तत्व के उपदेश में जो जोर आएगा है, ऐसे दूसरे वैद्य क्यों कहा कि उसको बता है कि कितनी मात्रा में कैसे, या दूसरा जो जैसनाचार्य जी उसका दूसरा औषधि बताते हैं कि जैसनाचार्य जी के अनुसार कि विश्व वैद्य विश्व में जो मारक शक्ति थी उसका अभाव करता है। जैसे न कि विश्व वैद्य क्या करता है कि जहर में जो मारने की शक्ति थी उसे कहना चाहिए थोड़ा संक्षेप रूप से अर्थ किया कि विष वैद्य उस विष की मारक शक्ति का नाश करता है। मारक शक्ति का नाश करने पर क्या होता है कि वो जहर का सेवन करने पर भी वो नाश का कारण नहीं बनता। और बिना करने एक उदाहरण और आता है ऐसा कि अग्नि के पास एक मणि होता है, जैसे चंद्रकांत मणि सूर्यकांत मणि होते हैं, ऐसा ही एक मणि होता है। जो मणि अग्नि के पास रख दो तो वो अग्नि में से उष्णता खींच लेता है, फिर जैसे कपड़े को हिलाते डुलाते ना वैसे अग्नि को हिलाओ डुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उस अग्नि में से वो जलाने की जो शक्ति थी वो निकल गई। ऐसे ही विषय शरीर या अन्य पदार्थों पर ज्ञान का उपयोग जाता है तो भी दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर होता है, उसमें फर्क पड़ता है। ऐसे ही जहाँ उपयोग होता है वैसा ही विचार हो, समान विचार हो, जरूरी नहीं है। आगे तीसरी अनाकार उपयोग मई दृष्टि शक्ति, सामान्य अर्थ पढ़ना है कि अनाकार उपयोग मई जिसमें कोई आकार नहीं, ये दृष्टि शक्ति के द्वारा आत्मा वस्तुओं को सत्ता मात्र ग्रहण करता है। और स्वामी जी ने ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे चित्ती शक्ति दृष्टि शक्ति और सकते है ना अनंत शक्तियाँ और सुख गुण आदि अनंत गुण, तो ये दृष्टि शक्ति ये सामान्य जीव मात्र ग्रहण करके देख नहीं सकते है। ये कनु भाई है, ये गुजराती है, ये यहाँ के रहने वाले, ऐसे भेद दृष्टि शक्ति में नहीं होते हैं। वो सामान्य रूप से सत्ता मात्र ग्रहण करती है और उसी समय अग्नि शक्ति साकारोपयोग मई ज्ञान से उसी समय आकार सहित ग्रहण करने वाली ज्ञान शक्ति है जो पदार्थ का। अब शक्ति का मतलब क्या है? जैसे विद्या और विद्या दोनों में अंतर क्या है? रिद्धि और विद्या में अंतर क्या है? बहुत सारे अंतर है। संयमियों को प्रकट हो वो रिद्धिया भी होती है, विद्या भी होती है, क्योंकि जो दसवा अंग है विज्ञानुवाद, दसवा पूर्व है विज्ञानुवाद पूर्व, विज्ञानुवाद पूर्व को पढ़ने के बाद विज्ञानुवाद पूर्व के अंत में विज्ञानुवाद पूर्व पढ़ लिया तो रोहिणी आदि पांच महाविद्या और अमृत प्रसन्न आदि 700 लघु विद्याएं अपने आप प्रकट होती। कब? दसवा पूर्व पढ़ने के बाद। अब कैसे कैसे प्रश्न किए देखो कि दसवें पूर्व में पूर्वधारी जो मुनिराज है उनको अर्घ चढ़ाओ, पहले प्रश्न कैसे होते हैं? और सर्व पूर्व शब्द आता है ना प्रवादिनां निमित्त विद्या, तो उसमें 10 पूर्वधारी को पहले नमस्कार और 14 पूर्वधारी को बाद में नमस्कार किया, तो उस पर भी प्रश्न किया कि ये ऐसा क्यों किया? चतुर्दश पूर्व वाले का ज्ञान ज्यादा और 10 पूर्व वाले का ज्ञान कम है ना, और ज्ञान जिसका ज्यादा है उसको पहले नमस्कार करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और यहाँ तो उल्टा किया, 10 पूर्व वाले को पहले नमस्कार किया और चतुर्दश पूर्व वाले को बाद में नमस्कार किया, ऐसा क्यों? तो उसने ये बताया, धौला का प्रकरण है, उसने समाधान ये किया कि 10 पूर्व दो प्रकार के, भिन्न 10 पूर्व और अभिन्न 10 पूर्व, बराबर है। अब जो भिन्न 10 पूर्व है वो क्या होते हैं कि विद्याओं के लोग में फंसे, और जो विद्याओं के लोग में न फंसे और अपने स्वरूप में ही रहे, अपने साधना से विचलित न हो, वो अभिन्न 10 पूर्व होते हैं। तो वो क्या वहाँ समाधान ये किया कि मात्र ज्ञान की दृष्टि से ही नमस्कार करना होता तो चतुर्दश पूर्व को नमस्कार करते, लेकिन यहाँ ज्ञान से आदाब पर नमस्कार नहीं किया, उनके त्याग को बताने के लिए। किसको बताना था? त्याग की महिमा को बताने के लिए। और दो बात हो रही इसमें कि 64 ऋद्धियों में 3 प्रसंग ऐसे होते हैं, 64 ऋद्धियों में 3 प्रसंग ऐसे होते हैं जहाँ देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है। तो केवल ज्ञान ऋद्धि, चारों मिला के देव आकर के पूजन करते हैं। और दल ये जो अभिन्न दसपुर की ऋद्धि, मुझे कार्यकर्म का विकल्प नहीं आया था। क्या कि चतुर्दशपुरी जो मुनिराज है, चतुर्दशपुरी समझ गए, 14 पूर्व का अध्ययन पूरा हो गया स्वयं या आचार्य के द्वारा, और 10 पूर्व का अध्ययन पूरा हो गया। तो चतुर्दश पूर्व का अध्ययन पूरा होने के बाद, 10 पूर्व का अध्ययन पूरा होने के बाद 4 निकाय के देव आते हैं। जिस समय पूरा हो गया तो रात्र राहु से रात्रि में कायोत्सर्ग मुद्रा में दोनों मुनिराज रहे, कौन? चतुर्दश पूर्वी और दस। तो सुबह के समय प्रातः काल में चतुर निकाय के देव आकर के वाद्य यंत्रों के साथ संगीत में उनकी पूजन करते हैं। और दूसरी बात ये भी लिखी है दौरा, इन दो स्थानों पर ही जिन वचनों पर विश्वास पाया जाता है, 64 ऋद्धियों में पूरे रमेंगे, दो स्थान बताए कौन कौन से, एक तो दसपुरी वाला और एक चतुर्दशपुरी वाला। इन दोनों स्थानों पर ही है कि बाहर में देवता आदि प्रलोभन आने के बाद भी जो अपनी साधना से विचलित नहीं होते, बात नहीं आगे, दो स्थानों पर ये बताया। तो वहाँ ऋद्धियों के प्रकरण में है लंबा चौड़ा कि ऋद्धि किसे कहते। सामान्य बात यह है कि जो अपने आप प्रकट हो, जिसको लक्ष्य बनाकर प्रयत्न न किया जाए, अपने आप प्रकट हो। 46 तो शरीर संबंधी है और 18 ज्ञान संबंधी है, ऐसी 64 ऋद्धियाँ है। तो ज्ञान में जो सर्वोत्तम प्रकट हुआ वो भी अपने आप, और शरीर में जो परिणाम या विशेषताएं पाई गई वो भी अपने आप। अपने आप हो तो ऋद्धि है, ऐसे ही जो अनादि काल से अपने आप है वो शक्ति है। जो अनादि काल से अपने आप है, सम्यक दर्शन प्रकट हो ये तो बाद की है, लेकिन सम्यक दर्शन से पहले श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन होने की शक्ति अनादि से, अनादि से न हो तो ये बताओ किस काल में प्रकट हो गई? तर्क समझ में आ गया कि कब प्रकट हो गई? दूसरा, अगली शक्ति है अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। रजनी में कितने समाचार है? 345। ये अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, उनकी शक्ति है तो भी अनाकुल है लक्षण जिसका। पांचवी कि जहाँ राग द्वेष है वहाँ विकल्प है, जहाँ विकल्प है वहाँ आकुलता है, और जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। तो क्या जहाँ राग द्वेष है वहाँ आकुलता है, और जहाँ आकुलता है, जहाँ राग द्वेष है विकल्प है, विकल्प है आकुलता है, आकुलता है वहाँ पर दुख। लेकिन चैतन्य जाए भगवान आत्मा में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ दुख हो। चलो भाई, कौन सा प्रदेश ऐसा है कि जहाँ दुख है? स्वामी जी ने तो प्रदेश की अपेक्षा है उसका खुलासा कि चैतन्य जाए भगवान आत्मा में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जहाँ दुख हो, कि आत्मा के प्रत्येक क्षेत्र में सभी शक्तियाँ रहती। समझना भैया, आत्मा के सभी क्षेत्र में, सभी प्रदेशों में सभी काल में ये अनंतानंद शक्तियाँ सदा काल पाई जाती है। तो कौन से प्रदेश में सुख है, कौन से प्रदेश में नहीं है, कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि प्रत्येक प्रदेश में सुख 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 भरा पड़ा। तो वही प्रश्न इसी प्रश्न पर स्वामी जी ने कारण समय सार को जाना कि कारण समय सार है तो उसका कार्य आना चाहिए, कि सुख है तो पर्यानी प्रगति भी होना चाहिए। तेरे पूरे बुद्धि से पूरे तर्क से धर्म प्रगति नहीं होता है, कि वहाँ दृष्टि दे तो पर्याय में प्रगति हो जाएगा और वहाँ दृष्टि न रहे तो प्रगति नहीं होगा। अगली शक्ति देखते हैं वीर शक्ति, ये भी अच्छी क्या लिखा है कि स्वरूप शक्तियाँ तो सभी अच्छी अनंतानंत शक्तियाँ कभी पार नहीं, लेकिन जीव को स्वरूप की ओर निहारने का समय नहीं। पर मैं अच्छा पड़ा है साध्याय में भी सुनता है शब्दों को जानता है, और अब तो ऐसी स्थितियाँ आ गई समाज में कि बहुत सारे विद्वान तैयार हो बड़ी खबर से। पंडित जी बताए कि पहले कहते इधर बड़ी खबर से है, बहुत पहले से ही पता है। देखो यहाँ क्या है, वीर शक्ति का स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूप कहती है कि स्वरूप पर्दे रूप की चर्चा नहीं, समझ में इस तरह से लिया पंडित साहब कि स्व शब्द पर ध्यान देकर के दोनों तरफ होगा कि पर का कार्य करे ऐसी देर में वीर शक्ति नहीं, इधर होगा चाहिए दो तरह से दोनों अंगलों से लिया है। किशोर भाई समझ में आती है बात, अफ्रीका के आने हैं वो इसी के लिए आए, इसके बाद कौन मर जाएंगे। क्या लिखा है स्वरूप निर्वर्तन, क्या शब्द है स्व 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 पर जो कि अपना ही रूप स्वरूप निर्वर्तन। तो संस्कृति ही देखती है यहाँ पर कि द्रव्य में गुण में और पर्याय में बहुत समझ लीजिए का कि अपना रूप द्रव्य में है, अपना रूप गुण में है और अपना रूप पर्याय में है, कि अपने द्रव्य की रचना करना, अपने गुण की रचना करना और अपने पर्याय की रचना करना स्वरूप निर्वर्तन। अब ये तो उपचार है, स्वामी जी आगे भी कहते हैं ये तो उपचार है कि अनादिकाल से जो स्वरूप है द्रव्य और गुण का पर्याय का प्रति समय का है, कि ये जो रूप है ये अनादिकाल का ही बना हुआ है, रचना तो तब होना नहीं है। जैसे अकृत्रिम जिनाले किसने बनाए, अकृत्रिम चाहे उसको अकृत्रिम है ये अनादि से है। अब अनादि से है तो क्या जो रचना बनाई हो किसने बनाई, तो वो परमाणुओं के द्वारा वैसी ही रचना बनी हुई है। ऐसे ही जीव द्रव्य का जो निर्वर्तन है रचना है वो अनादि की है, निर्वर्तन रचना ये अनादि की है, उसको किसने बनाया, किसने नहीं बनाया। तो ये जो निर्वर्तन है जीव का स्वरूप है, वो स्वरूप का निर्वर्तन की सामर्थ्य किसने किसी ले सकती है, अनादि से है तो उसने किया। लेकिन ये जो रचना है ये रचना कौन से शक्ति के कारण से, कि मुझे मेरी रचना करने के लिए। अब इसके आगे इसकी जब व्याख्या की रही है तो स्वामी जी ने सम्यक दर्शन का उदाहरण दिया कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए किसी अन्य देव गुरु आदि की आवश्यकता नहीं है। ये शक्ति मूल उदाहरण होता है, मतलब उदाहरण के रूप में कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए, अनंत सुख प्रकट करने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद आदि प्रकट करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। क्यों कि मैं सदाकाल वीर शक्ति से संबंध था मेरे द्रव्य में मेरे गुण में। यहाँ एक प्रश्न और किया कि साधक मोक्ष में जो भी थे उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो शक्तियाँ हैं ये तो दो रूप है ना, तो रचना की बात कहाँ से आ गई है? ध्रुव रूप है तो रचना की बात कहाँ से आ गई, प्रश्न किया। सभी तरह के प्रश्न तो करते ही है कि ऐसी रचना मतलब ध्रुव शक्ति है ध्रुव रूप है, तो स्वामी जी ने जवाब ये दिया है तो ऐसा ही मतलब है तो ऐसा, लेकिन जब चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा पर दृष्टि जाती है तो पर्याय जो निर्मलता हुई वो भी किसी शक्ति का परिणाम है, क्योंकि स्वरूप में दृष्टि जाने पर एक ही शक्ति तीन में व्यापक हो जाती, एक ही शक्ति तीन में व्यापक होती है। जीव की शक्ति के व्याख्यान में उन्होंने बताया कि एक ही शक्ति तीन में व्यापक हो जाती है, तो जो पर्याय में निर्मलता या निर्मल पर्याय का जो निर्वर्तन हुआ वो कहाँ से हुआ, वो कोई फल के कारण से नहीं हुआ है, अपने कारण से हुआ है। और भी उदाहरण वहाँ दिए स्वामी जी ने कि किसी के तीर्थंकर की वाणी से ज्ञान होता है, वो गणधर का उदाहरण याद दिया कि गणधर को द्वादशांग का ज्ञान तीर्थंकर के कारण से ही तो होता है, है? ध्रुव कैसे कैसे समझना चले कि तीर्थंकर को द्वादशांग का जो ज्ञान होता है जो रचना हुई, यहाँ तक का स्वामी जी ने अंतर्मूर्त शब्द का भी प्रयोग किया कि अंतर्मूर्त में द्वादशांग की जो रचना होती है वो तीर्थंकर के कारण से नहीं अपने वीर गुण के वीर शक्ति के कारण से होती है। कोई इत्यादि ख्याति गाथा समय था कि जो विकार होता है वो पर के कारण से नहीं, कर्म के उदय के कारण से भी नहीं, उस समय वो अपने आप स्वयं ही परिणमित होता है, ऐसे ही लेकिन मेरे शक्ति के कारण से। लेकिन साथ में ये भी कहा कि विकारों के जो विकार होता है वो प्रश्न समझना है, हाँ वो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना कि अभी विकार क्या प्रश्न उठाने वाले को शक्तियों का भान नहीं है, ये तो अंतःपातिनी शक्तियों की चलता है। तो जिसको दृष्टि में विषय आ गया, चैतन्य जाए भगवान आत्मा दिखाई दिया, उसकी चर्चा है। अगली शक्ति है प्रभुत्व शक्ति, किसमें नहीं है बताओ किसमें नहीं है? अब यदि सब में है तो ये बताओ कौन छोटा और कौन बड़ा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये सभी महान है, प्रभुत्व शक्ति में ये बताते हैं कि तू अनंत गुणों का राजा है, और विभुत्व शक्ति में ये बताते हैं कि तू अपने अनंत गुणों में व्यापक। जैसा राजा उदाहरण में तो नहीं आती है बात समझ, क्योंकि राजा प्रजा में व्यापक कैसे होगा, एक चीज होता है ना उदाहरण कि जो राजा है तो राजा ही रहेगा, हर प्रजा में घुस नहीं सकता। तो ये प्रभुत्व शक्ति के द्वारा ये बताया कि प्रत्येक द्रव्य चैतन्य राजा है, और विभुत्व शक्ति के द्वारा ये बताया कि जिनका तू राजा है प्रत्येक में तू व्यापक है, प्रजा में व्यापक है। प्रभुत्व शक्ति से प्रवीण समझ जाएंगे, प्रभुत्व शक्ति से क्या बताया कि प्रत्येक द्रव्य राजा है। छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, किसी को ज्ञान है किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को धन का संयोग है किसी को नहीं है, किसी का शरीर कैसा है किसी का कैसा है, बाहर संयोगों की शक्तियों में चर्चा नहीं, दो बातों की चर्चा नहीं। शक्तियों में व्यवहार का अभाव है अर्थात राग का अभाव है, और संयोगों का भी अभाव है, इन दोनों की चर्चा है यहाँ। यहाँ तो शक्तियाँ इसीलिए महत्वपूर्ण है कि प्रभुत्व शक्ति के कारण से प्रत्येक जीव द्रव्य प्रभु है, बात समझ में आई। और विभुत्व शक्ति से वो जो राजा है वो अपने प्रत्येक प्रजा में व्यापक है, समझ में आ गई। प्रभुत्व शक्ति से कर्म के उदय से या पाप के उदय से या पुण्य के उदय से, पाप के उदय से उसका प्रताप कुछ कम हो जाए, पुण्य के उदय से उसका प्रताप कुछ बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। पाप और पुण्य का उसमें प्रवेश ही नहीं है। अखंडित न द्रव्य से खंडित है, न क्षेत्र से खंडित है, न काल से खंडित है, न भाव से खंडित है। रजनी भाई आपने कहा इसलिए सामान्य सामान्य पढ़ रहे हैं, बाकी तो बहुत है। स्वामी जी उनको बहुत बोला है अखंडित प्रताप, और वो अखंडित प्रताप भी कहता है कि स्वातंत्र की घोषणा करने वाले। वैसे तो स्वामी जी कहते हैं कि अनंत शक्तियाँ जीव के जीवन की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली है। क्या कहा? जीव का जीवन स्वतंत्र है, उसको चिंतित मात्र भी पर की अपेक्षा नहीं है। सच्चे पंडित को प्रवचन की आवश्यकता नहीं। पंडित किसे कहते हैं? हिताहित विवेकिनी बुद्धि पंडा। हिताहित विवेकिनी बुद्धि पंडा का अस्ति यस्य इति पंडित है। हित और अहित का विचार करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं, और वो बुद्धि जिसमें पाई जाती है उसको पंडित कहते हैं। तो इस अपेक्षा से क्योंकि एक मरण आता है ना पंडित में, पंडित मरण बाल मरण, पंडित पंडित मरण बाल पंडित मरण, अनुवृत्ति बाल पंडित मरण, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति बाल मरण। हाँ बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि हो तो बाल बाल मरण कहने का मतलब ये है कि पंडित जी को सम्मेद सच्चा ज्ञानी वो पंडित है। तो यहाँ ये जो प्रताप बताया वो कैसा है कि अखंडित है, स्वातंत्र सारित्व है, ऐसे लक्षण वाला वल्य प्रभुत्व शक्ति है, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति, सभी भावों में व्यापक रहना, एक गुण का रूप अनंत गुणों में क्यों है उसका जवाब है कि एक गुण का रूप अनंत गुणों में क्यों है। एक गुण का रूप अनंत गुणों में इसलिए है क्योंकि सर्व भावों में व्यापक होना ऐसी शक्ति तेरे भीतर है। उस शक्ति के कारण विश्व विश्व सामान्य तीन शक्तियाँ हैं, एक तो आती है दूसरी शक्ति और एक आती है सर्वदर्शित शक्ति और तीसरी शक्ति की कौन सी स्थिति दृष्टि और सर्वोदय बराबर स्थिति शक्ति को पारिणामी भाव रूप बताया है ना, और ज्ञान दर्शन में भी बताया, और उस ज्ञान दर्शन का स्थिति शक्ति उसका लक्षण है, स्थिति शक्ति का दृष्टि शक्ति लक्षण है और सर्वदर्शी शक्ति का परिणाम उसका कार्य है। तीन शक्तियों में स्थिति दृष्टि और सर्वदर्शी, स्थिति व्यक्ति और सर्वज्ञ है ना, स्थिति दृष्टि और सर्वदर्शी, स्थिति व्यक्ति और सर्वज्ञ इनका मेल है। समय हो गया अभी शक्ति पढ़नी है, सब सत्व शक्ति तो निरूपमात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोक आकार नेतक उपयोग लक्षणा सत्सत्व शक्ति। तो इसमें ये समझना केवल सामान्य भाव मुझे बताना है इसका मुख्य रूप से पंडित द्वारा कि निरूप सामने वाले पदार्थ का आकार ग्रहण किए बिना जैसे दर्पण राई को प्रकाशित करने के लिए राई जितना नहीं होता नहीं रहता, और कोई बड़ी चीज को उसको झलकाना है तो बड़ा नहीं होता, वो जितना है उतना ही रहता है, निरूप सामने वाले का रूप ग्रहण किए बिना आत्म प्रदेश में प्रकाशमान लोकालोक कि जो ज्ञान जितना है वैसा ही रहता है। हालांकि ज्ञान की सोना मत भैया, दो मिनट रह गए, केवल ज्ञान के एक तरह की महिमा बताते समय स्वामी जी के प्रवचन में बात आई है व्याख्यान में कि ऐसे अनंतानंद लोग होते तो भी है ये अलग बात, लेकिन ऐसे अनंतानंद लोग होते तो भी वो एक समय की पर्याय को ज्ञान की बराबर है। तो एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है वो लोकालोक का आकार ग्रहण नहीं करती, और ऐसे अनंतानंद लोक होते तो भी बड़ी नहीं हो जाती, उनका लोक और अलोक का आकार ग्रहण किए बिना नेचर उपयोग लक्षण जैसा पदार्थ है उस पदार्थ को उसी आकार को ग्रहण करके जान रहना, वस्तु अपेक्षा वैसे ही रहे लेकिन झलकाने के लिए जैसा आकार है वैसा ही झलकाती है। इस प्रसंग में बुद्ध उद्देश्य में अनेक उदाहरण दिए सत्य शक्ति में, उसका सारांश ये है जिस समय अभी बीच में कभी भी हो गया कि सारांश ये है कि जो शिक्षा की दृष्टि से कि पुण्य का उदय हो अथवा पाप का उदय हो वो तो सत्य शक्ति के कारण से पर्याय में झलकता है बराबर। तो पहले भी झलकता था आज भी झलकता है, लेकिन सत्य ज्ञान की बात ये है कि वो पुण्य पाप के अनुरूप है, पुण्य पाप के प्रमाण है। कैसा है? पुण्य पाप को अनुरूप है, पुण्य पाप के प्रमाण है, वहाँ राग द्वेष नहीं करना। बात स्वच्छ शक्ति के कारण से कि प्रत्येक जैसे शरीर काला है गोरा है बीमार है जो भी है वो ज्ञान में झलकता है। धनादि का संयोग वियोग आदि ये सारी चीजें संसार का जितना भी चक्र है पुण्य और पाप दो चक्र है संसार के उसके ऊपर गाड़ी चलती है, ये संयोग वियोग है, ये विचारणी तो नहीं है, लेकिन ज्ञान से जब वे बनते सुबह चंद्र शक्ति आएगी जो परिणाम में परिणामक है ये विश्व के पदार्थ ज्ञान के जोल है, कोई शत्रु नहीं कोई मित्र नहीं। इस शक्ति ने कामदेव कहा कि कोई अच्छा नहीं और कोई बुरा नहीं है, वो तो केवल तुम्हारे सत्य शक्ति के कारण से झलकते हैं, उनमें व्यक्त शक्ति है प्रमेयत्व शक्ति है, तुम्हारे में जानने की शक्ति है, तुम्हारे में वो जानने में आ जाएंगे स्वच्छता के कारण से। तुम चाहो तो न चाहो तो जैसे केवल भगवान चाहे अथवा न चाहे ये बात अलग है कि उनकी इच्छाओं का अभाव है, चाहे या न चाहे उनके केवल ज्ञान में विश्व के पदार्थ झलकते ही है चाहे अथवा न चाहे। ऐसे ही ज्ञान में सत्य शक्ति के कारण से पदार्थ झलकते हैं, लेकिन ये पदार्थ झलकना स्वभाव है, पुरुषार्थ ये हो कि उनको देख करके राजे स्वभाव नहीं हो। फिर कभी कोई किसी को कठोर बोला गया शक्तियों के प्रसंग में, फिर अभी समाप्त हो गया अपने शक्ति का वर्णन, कोई कठोर बोला गया कुछ हो गया तो क्षमा करना क्षमा का भाव इन्हें शब्दों से अपना सुधार।
Thank you.